ఆదిగురు సర్వజ్ఞ భగవాన్ శంకరాచార్యజీ ద్వారా విరచిత్ వేదాంత డిండిమ స్తోత్ర కే ఆధార్ పర్ వేదాంత విచార్ చల్ రహా హై. విచార్ కే లియే తీసరా శ్లోక్ జ్ఞానాజ్ఞాని పదార్థౌ ద్వౌ ఆత్మనో ముక్తివందదౌ. జ్ఞానాన్ముక్తిర్నిబంధోన్యాత్ ఇతి వేదాంత డిండిమః. జ్ఞాత్రీ జ్ఞేయ పదార్థౌ ద్వౌ భాష్య సకల లక్షణౌ. భాష్య భాసక లక్షణౌ జ్ఞాత బ్రహ్మ జగత్ జ్ఞేయం ఇతి వేదాంత డిండిమః. సుఖ దుఃఖే పదార్థౌ ద్వౌ ప్రియ విప్రియ కారకౌ. సుఖం బ్రహ్మ జగద్ దుఃఖం ఇతి వేదాంత డిండిమః. సమష్టి వ్యష్టి రూపౌ ద్వౌ పదార్థౌ సర్వసమ్మతౌ. సమష్టిరీశ్వరో వ్యష్టిర్ జీవో వేదాంత డిండిమః. జ్ఞాన కర్మ పదార్థౌ ద్వౌ వస్తు కర్త్రాత్మతంత్రకౌ. జ్ఞానాన్ మోక్షో న కర్మభ్యః ఇతి వేదాంత డిండిమః. వేదాంత కా ఏ ఘోష హై, ఉద్ఘోష హై. వేదాంత దర్శన్ నగాడా పీట్ పీట్ కర్ సబ్కో సమ్జా రహా హై. సునో సంసార్ కే జీవో, సంసార్ మే కేవల్ దో పదార్థ హై. ఏక జ్ఞాన్ పదార్థ హై ఔర్ దూసరా అజ్ఞాన పదార్థ హై. ఇససే వేదాంత కా యే దృష్టి హై, కుచ్ ఆధునిక విచారధారా కే లోగ్ యే కహతే హై అజ్ఞాన్ పదార్థ నహీ హై. అజ్ఞాన్ జ్ఞాన్ కా అభావ్ హై, అభావ్ కోయి పదార్థ నహీ హోతా. సమజ్ రే? జబకి వేదాంత కా యే కహనా హై కి అభావ్ భీ స్వతంత్ర పదార్థ హై, వస్తు హై. అజ్ఞాన్ కో భావ వస్తు మానతే హై, భావ పదార్థ మానతే హై. అభావ్ కో భీ భావ పదార్థ మానతే హై. యే థోడా దార్శనిక్ పక్ష హై. నా न होना भी एक प्रकार के होने के सरा ही है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के भाव पदार्थ होने में प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु होना चाहिए। जिसके प्रति व्यक्ति प्रवृत्त होता हो उसको हम वस्तु मानते हैं। जिससे वह बचना चाहता है, निवृत्त होता है, उसको भी हम वस्तु मानते हैं। संतों के प्रति हम श्रद्धायुक्त अनुरक्त होकर संतों के पास हम जाते हैं, प्रवृत्ति होती है, तो संत है तभी जाते हैं। संत के ठीक विपरीत दुष्ट है तो उससे हम निवृत्त होना चाहते हैं, तो दुष्ट भी है। आप दुष्ट को संत का अभाव नहीं कर सकते, दुष्ट को संत का अभाव कहोगे तो इसका मतलब दुष्ट है ही नहीं। अभाव को कोई वस्तु मानोगे है? संत क्या होगा? संत का अभाव दुष्ट, तो अभाव तो कोई वस्तु होता ही नहीं, तो इसका मतलब संसार में दुष्ट तो कोई है ही नहीं। और ठीक इसी प्रकार से फिर संत किसको कहोगे? दुष्ट का अभाव। अभाव कोई पदार्थ होता ही नहीं है, तब तो फिर संसार में कोई संत ही नहीं है। अभाव भी एक भाव पदार्थ है, कोई बात यहां शंकराचार्य जी समझा रहे हैं शिष्यों को। संसार में केवल दो वस्तु हैं, एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञान है। हम ये कह रहे हैं कि अज्ञान को ज्ञान का अभाव नहीं मान लेना। अज्ञान एक स्वतंत्र वस्तु है। जैसे प्रकाश एक स्वतंत्र वस्तु है, अपना काम करता है, क्या काम करता है? प्रकाश पदार्थों को प्रकाशित कर देता है, वो काम कर रहा है ना। अपने उपस्थिति से सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, ये किताब है, ये फूल है, ये फूल माला है, तो प्रकाश एक भाव पदार्थ है। इसी तरह अंधकार को प्रकाश का अभाव नहीं मान लेना। अंधकार भी स्वतंत्र एक पदार्थ है, ऐसा नहीं समझ लेना कि अंधकार नहीं है, नहीं प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है। वह भी प्रकाश की तरह ही स्वतंत्र पदार्थ है। अब वो अपना काम करता है अपनी उपस्थिति में। अंधकार अपना काम क्या करता है भाई? तमाम पदार्थों को जैसे प्रकाश प्रकाशित करता है, तमाम पदार्थों को अपनी उपस्थिति से अंधकार ढक लेता है। आखिर पदार्थों को ढका किसने? अंधकार ने ढका। और जो वस्तु है ही नहीं वह क्या काम करेगा? अंधकार को यदि प्रकाश का अभाव मानोगे तो फिर वो अभाव पदार्थ क्या काम करेगा, जो पदार्थ है ही नहीं। और जबकि अंधकार काम कर रहा है कि नहीं, तमाम पदार्थों को ढक के रखा है कि नहीं उसने, जिस तरह प्रकाश ने तमाम पदार्थों को प्रकाशित किया था इसी तरह अंधकार तमाम पदार्थों को आवृत्त करता है, ढक देता है। काम तो अंधकार भी कर रहा है ना, अपना काम तो कर रहा है ना। और जो काम कर रहा है उसको कहोगे कुछ भी नहीं है। जैसे ये दृष्टांत, इसी तरह ज्ञान और अज्ञान ये दो पदार्थ हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों अपना काम करते हैं, ज्ञानाज्ञानौ पदार्थौ द्वौ, ज्ञान और अज्ञान नाम के ये दो पदार्थ जगत में हैं। ये बात और ख्याल रख लेना हो, शंकराचार्य जी जब ये कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान ये दो पदार्थ जगत में हैं, लेकिन ये दो पदार्थ परमार्थ में नहीं है, अन्यथा अद्वैत हानि हो जाएगा। इसलिए तो जगत में है शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। जगत की सत्ता ही व्यावहारिक सत्ता है, जगत की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। और वेदांत के दृष्टि से सारा जगत का मूल उपादान कारण ही अज्ञान है। इसीलिए कहा ज्ञान और अज्ञान पदार्थ दो। जगत होने से पहले जगत के कारण के रूप में ज्ञान और अज्ञान दो वस्तुओं का अस्तित्व था। दोनों अपना अपना काम करते हैं, ज्ञान ने अज्ञान को अधिष्ठान आश्रय दिया। ध्यान दो, ज्ञान ने अज्ञान को आश्रय दिया, ज्ञान अज्ञान का अधिष्ठान बन गया, आश्रय दिया, तब जाकर अज्ञान अपना काम कर पाया। अज्ञान ने क्या काम किया? ब्रह्म को ढक दिया, द्वैत भाव कहां खड़ा किया, जो अद्वैत था उसको भी ढक दिया है। अज्ञान ने क्या काम किया, जो अद्वैत था उसको भी ढक दिया। तो इसीलिए अज्ञान के दो पक्ष मानना पड़ता है। आवरण और विक्षेप, ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी है ये शब्द। अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान ये दो पदार्थ हैं, और अज्ञान का एनालिसिस करो। अब क्या करोगे, अज्ञान के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स, एक भाग अद्वैत को ढक देता है, और दूसरे भाग से अद्वैत में से द्वैत खड़ा कर देता है। अद्वैत को ढके बिना द्वैत खड़ा नहीं होगा। जो द्वैत खड़ा करता है उसका नाम विक्षेप है। अद्वैत को ढकता है यानी ज्ञान को ढकता है आवरण, द्वैत खड़ा करता है विक्षेप। एक को ढके बिना अनेक को दिखाने संभव नहीं। तुम एक ही दृष्टि से एक भी देख लो और अनेक भी देख लो, एक जिस तरह देख रहे हो अनेक को उसी तरह देख लो, यह संभव नहीं होगा। एक दिखा तो अनेक नहीं दिखेंगे, अनेक देखा एक नहीं दिखेगा। एक नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं कहना है कि अनेक देखा इसलिए एक नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। एक नहीं दिख रहा है इसलिए अनेक दिख रहा है। शब्दों पर ध्यान देना आप। एक को देखना नहीं देना इसीलिए एक नहीं दिखा, इसलिए क्या दिखा, अनेक दिखाई पड़े। और आश्चर्य को आश्चर्य की बात, एक देखा तो फिर अनेक दिखेंगे नहीं। एग्जाम्पल दे दूं मैं, मंद अंधकार के समय में चार व्यक्ति जा रहे थे, सामने एक रस्सी पड़ी थी तो रस्सी किसी ने भी नहीं देखा, रस्सी को, समझ रहे हैं ना, वेदांत का यही दृष्टांत है। रस्सी को किसी ने भी नहीं देखा, चार में से चारों ने रस्सी को नहीं देखा। रस्सी को नहीं देखा इसीलिए एक ने सर्प देखा, दूसरे ने जलधारा देखी, तीसरे ने भूछिद्र देख लिया, चौथे ने डंडा देख लिया, पांचवें ने माला देख ली। ये पांच पदार्थ देखा, पांच आदमियों ने क्या देखा, पांच पदार्थ देखा। और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि मैं माला देख रहा हूं, दूसरा कह रहा है कि मैं सर्प देख रहा हूं, तीसरा कह रहा है कि मैं डंडा देख रहा हूं, चौथा कह रहा है कि जलधारा देख रहा हूं, पांचवा कह रहा है कि भूछिद्र देख रहा हूं। ये जो अनेक दिखाई पड़े किस कारण से दिखाई पड़े, एक न देखने के कारण दिखाई पड़े। और पांचों ने यदि रस्सी को देख ली होती तो पांच पदार्थ दिखता है। तो जगत आपको दिख रहा है किस कारण से, एक के दिखाई न पड़ने के कारण। यदि वह एक दिखाई पड़ जाए तो जगत दिखाई पड़ेगा नहीं। तो वही बात यहां कह रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान ये दो पदार्थ हैं। ज्ञान आधार का हेतु है, अधिष्ठान का हेतु है। अज्ञान अध्यारोप का हेतु है, अधिष्ठान अध्यारोप का हेतु नहीं, अज्ञान अध्यारोप का हेतु है। अध्यारोप का कारण क्या है, है? अध्यारोप का उपादान कारण क्या है? अज्ञान है। अध्यारोप का उपादान कारण ज्ञान नहीं है, अध्यारोप का उपादान कारण अज्ञान है। और ज्ञान क्या है तो बोले अज्ञान तो उपादान कारण नहीं, अधिष्ठान है। अधिष्ठान कोई उपादान कारण नहीं होता है। क्योंकि उपादान कारण उसको कहते हैं कार्य में उसका अनुगत होना चाहिए। उपादान किसको कहते हैं? कार्य में उसका अनुगत होना चाहिए। अनुगत माने उपस्थिति होनी चाहिए, कार्य से पहले होना चाहिए, कार्य में उसकी उपस्थिति अनुगति होनी चाहिए, और कार्य नाश हो जाए तो भी उसका अस्तित्व रहना चाहिए, उसी को उपादान कारण कहते हैं। अधिष्ठान ज्ञान है तो ज्ञान कार्य में अनुगत नहीं होता है, कार्य में अनुगत तो अज्ञान ही रहता है। ये सब वेदांत की प्रक्रियाएं हैं भाई। ब्रह्म विद्या का स्वरूप ही यही है, वेदांत विद्या का स्वरूप ही यही है, और इसी बात को समझना जरूरी है मुमुक्षुओं को। और लोगों को तो ये बात समझ में ना आए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, मुमुक्षुओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात को ना भी समझ लें तो। मुमुक्षुओं को तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। सपेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा रज्जु में सर्प दिखाई पड़ रहा हो तो, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो तो और मस्त हो जाएगा, चलो एक और सर्प मिल गया है? उसको तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सर्प से भयभीत होकर डरता फिर रहा है उसको तो रस्सी का ज्ञान होना जरूरी है। सपेरे को रस्सी का ज्ञान होना जरूरी है, उसको तो और नुकसान हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलो? पांच टुकड़े रस्सी के पड़े हों, सपेरा सर्प खोजता हुआ घूम रहा हो तो वो तो और खुश हो जाएगा, पांच पांच सर्प हमको मिल गए। मिलेगा वो खुश होगा कि नहीं बोलो? सबको कहेगा हमको पांच पांच सर्प मिल गए, हमने देखा है फलाने जगह है, वो तो और खुश हो जाएगा। लेकिन जो एक सर्प से भी डर रहा है उसके डर का समाधान तो रस्सी ज्ञान हुए बिना नहीं होगा। इसी तरह भुभुक्षुओं को तो अज्ञान और अज्ञान जनित कार्य जगत भोग पदार्थ उपलब्ध हो रहा है और वो होना ही उसके लिए सार्थकता है भुभुक्षुओं को। तो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो क्या भोगेगा वो? तो मुमुक्षु को ही भोग से निवृत्त जो होना चाहता है, कति नाम सुता न लालिता कति नाम बधू रमुंजी, कितने जन्मों से संसार को भोगा है, ये सब भोग भोग कर भी उपलब्धि क्या हुई? ततः किम ततः किम धनम मेरु तुल्यम ततः किम, तो उसको तो फिर ये विचार करना जरूरी है। तो क्या विचार करना है? तो वेदांत ने यही कहा, घोषणा की है नगाड़ा बजाते हुए हल्ला करते हुए, इति वेदांत डिंडिमा। सुनो संसार के जीवो, ज्ञानाज्ञाने पदार्थौ द्वौ, संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक ज्ञान है दूसरा अज्ञान है। ये दो पदार्थ क्रमशः क्या काम करते हैं, आत्मनो मुक्तिबंधदौ दो मिलकर एक जीवात्मा खड़ा करते हैं, है दोनों मिलकर क्या करते हैं, जीवात्मा जीव भाव खड़ा कर देते हैं। और उस दो मिलकर जो खड़ा किए हुए जीव को दोनों का कंपटीशन चलता है। अज्ञान कहता है कि मैं इसको मूर्ख बनाए रहूंगा, क्या कहता है अज्ञान बोलो, अज्ञान क्या कहता है, ज्ञान को कहता है तू थोड़ा दूरी रहो मैं इसको मूर्ख बनाए रखता हूं, हाँ। और ज्ञान कहता है कि तू थोड़ा दूरी रहो इसको मैं मुक्त कर देता हूं, इसको थोड़ा समझदार बनाता हूं, कि दोनों का फाइट आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ये जो दोनों की झगड़ा है वो इसी जन्म में निपट जाए। अब यही जन्म में ना निपटे कदाचित तो पता नहीं कब तक चले, ये खटपट अभी से शुरू हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से है। तुम यदि जीव हो, तुम यदि कर्ता हो, तुम यदि भोक्ता हो, तो ईमानदारी से बताओ कब से कर्ता हुए हो और कब से भोक्ता हुए हो, है उसकी कोई तिथि मिति याद है, कब से कर्ता हुए हो कब से भोक्ता हुए हो, हाँ शादी कब की है उसका तो तिथि मिति याद रखा होगा ना, है एनिवर्सरी डेट है ना, और अभी अनुसंधान करोगे तो घड़ी पल भी याद होगा, कितनी बजकर कितनी मिनट में हाथ पकड़ी थी, ये तो शादी है, क्या है शादी है, आदि सहित है, इसका तो स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है शादी, अभी शुरू हुआ है, हमारे सामने शुरू हुआ है। हमारी शादी क्या हमारे पीछे हुई है कि हमारे सामने हुई है, हमारी शादी हो और हम जानते न हो ऐसा होगा, शादी हमारे सामने हुई है। आदि सहित को क्या बोलते हैं, आदि सहित को क्या कहेंगे, शादी और क्या, और जो आदि सहित नहीं है वो क्या है, अनादि। तो ये तुम ये ज्ञान का और अज्ञान का जो खटपट है वह क्या है, अनादि है। क्या खटपट है, तो अज्ञान का कहना है कि भाई तुम पीछे हटे रहो सामने मत आओ, क्यों, ताकि मैं इसको उल्लू बनाए रखूं मूर्ख बनाए रखूं, उससे क्या होगा, बोले उल्लू बनाए रखेंगे तो हमारा इज्जत बढ़ेगा, और समझदार हो जाएगा तो फिर हमारा तो गया काम, हमारा फिर कोई काम ही नहीं है। तो दोनों क्या काम करते हैं, मुक्ति बंद दऊ, तुम यदि ज्ञान का आश्रय लिए तो ज्ञान तुमको मुक्त कर देगा, यदि अज्ञान के पीछे लगे तो अज्ञान तुम्हें फंसाते ही रहेगा। ये दोनों क्रम से मुक्ति और बंधन देने वाले हैं, ज्ञान मोक्ष देने वाला है। और ये बात शंकराचार्य जी कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं। ज्ञानादेवतु कैवल्यम, केवली भाव तो ज्ञान मात्र से प्राप्त होता है। ये जैनियों का बहुत प्रिय शब्द है, ये जैन दर्शन का ये प्रिय शब्द है। पांच प्रकार के ज्ञान हैं, मति श्रुति अवधि मन प्रयाय केवलानि पंच ज्ञानानि। पांच प्रकार के जो ज्ञान हैं, उनमें से जो केवल ज्ञान है, केवली ज्ञान, वही असली ज्ञान है, बाकी सब ही अज्ञान के खेल हैं। तो जैन तत्वार्थ सूत्र में, जैन दर्शन का जो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में, वहां जो केवली ज्ञान की बात कही गई है, उसी को मुंडक उपनिषद में पराविद्या कहा है। मुंडक उपनिषद ने जिसको पराविद्या कहा है, उसको तत्वार्थ सूत्र में केवली ज्ञान के द्वारा कहा गया है। और उसी मुंडक के उपनिषद में जो अपराविद्या के नाम से कहा गया है, वह तत्वार्थ सूत्र में मति श्रुति अवधि मन प्रयाय, ये चार ज्ञान के रूप में कहा गया है। अपराविद्याएं, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जिस ज्ञान में अज्ञान का भाव विद्यमान हो उसको ज्ञान कह ही नहीं सकते। जिस विद्या में अविद्या का भाव विद्यमान हो उसको विद्या नहीं कह सकते। हम जिसको विद्या कह रहे हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, वहां से जो कुछ भी हम डिग्री लेते हैं या जो कुछ भी जानकारी लेते हैं, वह तो विश्वविद्यालय निकलने के बाद भी हमारे पास अज्ञान ज्यों का त्यों रहता है कि नहीं, बोलो। विश्वविद्यालय से जो डिग्री लेकर तुम निकलते हो, उसके बावजूद भी अज्ञान ज्यों का त्यों रहता है कि नहीं? क्या डिग्री लेकर निकलते ही सर्वज्ञ हो जाओगे? है, अज्ञान तो ज्यों का त्यों है। तो अज्ञान ज्यों का त्यों रहता हो तो उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहेंगे। इसलिए शंकराचार्य जी ने, यानी उपनिषद ने, अपरा विद्या कहा। विद्या तो है लेकिन वो अपरा है, निम्न कोटि का है, व्यवहार चलाने के लिए है। व्यवहार चलाने के लिए है वो पराविद्या नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ वो होगा जो पराविद्या की प्राप्ति होगी। यह यद अक्षरम अधिगम्यते तत्परा, इसलिए तो शंकराचार्य जी ने षट्पदी में लिख दिया है, तद ज्ञानम प्रसम करम यद इंद्रियाणा, उसी को ज्ञान कहा जा सकता है जिस ज्ञान के बाद इंद्रियों की विषयों के प्रति जो दौड़ने का क्रम था आसक्त होने का, वो सब प्रशमित हो जाए, निवृत्त हो जाए। या इंद्रिय शब्द के अर्थ वृत्ति को भी लेना, उसी को ज्ञान कहा जा सकता है जिस ज्ञान के बाद अंतकरण की वृत्ति भी निवृत्त हो जाए। प्रसम करम, उपराम हो जाए, निवृत्त हो जाए। कच्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम इच्छत आवृत्त चक्षुम अमृतत्वम इच्छन। और उस ज्ञान को तो ज्ञान ही नहीं कह सकते हैं कि जिस ज्ञान के बाद इंद्रियां और तड़फे, विषय के प्रति और भटके, खोजता फिरे, इसलिए वो भी अज्ञान के कोटि में है। और आत्मा को, जीवात्मा को बंधन में रखने वाला अज्ञान है, ये बात इस श्लोक के द्वारा कहा गया है। ज्ञानाज्ञाने पदार्थौ द्वौ आत्मनो मुक्ति, ज्ञान के द्वारा आत्मा की मुक्ति, अज्ञान के द्वारा आत्मा का बंधन। ये क्रम से ज्ञान और अज्ञान, मुक्ति और बंधन देने वाले हैं। मुक्ति दौ आत्मा, मुक्ति बंध दौ, मुक्ति प्लस बंध दौ देने वाले हैं। लेकिन एक बात आप समझ लेना, एक के सक्रियता में दूसरा निष्क्रिय होता है, दोनों एक ही साथ सक्रिय नहीं होंगे। ज्ञान निष्क्रिय होगा तो अज्ञान सक्रिय हो जाएगा, और जब तक अज्ञान सक्रिय होगा तब तक ज्ञान निष्क्रिय रहेगा। इसी तरह जब ज्ञान सक्रिय होता है तो अज्ञान निष्क्रिय हो जाएगा, और जब तक अज्ञान निष्क्रिय नहीं होगा ज्ञान सक्रिय नहीं होगा, और या जब तक ज्ञान सक्रिय नहीं होगा अज्ञान निष्क्रिय नहीं होगा। दोनों एक ही साथ नहीं करेंगे तो तुम मुक्त भी हो जाओ और बंधन भी रहे, तुम मुक्त भी हो जाओ और कर्ता भोक्ता भाव भी रहे, ये नहीं होगा। कर्ता भोक्ता भाव रहे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, मुक्त हो गए तो कर्ता भोक्ता भाव नहीं रहेगा। आप लोगों को पता है ना, कल की परसों हमारे स्वाध्याय प्रेमी प्रकाश भाई मेहता ने एक प्रश्न किया था स्वाध्याय के क्रम में। उन्होंने ये प्रश्न किया था कि महाराज, जीव का, जीव की उपाधि अविद्या नष्ट होते ही ईश्वर की उपाधि माया कैसे नष्ट हो जाएगी, उन्होंने प्रश्न किया था, है ना? ख्याल होगा आप लोगों। और क्योंकि हमने ये कहा था कि दोनों एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जीव की उपाधि नष्ट होने पर, होते ही ईश्वर की उपाधि क्यों नष्ट हो जाएगी, कैसे नष्ट हो जाएगी? तो स्पष्टीकरण हमने उस समय भी दिया था, तो प्रसंग चल गया इसलिए आज भी दे रहे हैं। जीव की उपाधि अविद्या नष्ट होते ही, उस उपाधि नष्ट हुए हुए को ईश्वर की आवश्यकता है कि नहीं, पहले आप इसका उत्तर दो हमें। मेरी उपाधि यदि अविद्या वो नष्ट हो जाए तो उपाधि नष्ट हुए हुए मुझे ईश्वर की आवश्यकता है कि नहीं, है? ईश्वर की आवश्यकता कब तक है? जब तक मेरी उपाधि अविद्या है, मैं जीव बनकर रहा हूं, तब तक ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर का काम है जन्म देना। अब मेरी उपाधि खत्म हो गई तो मेरा दोबारा जन्म लेना ही नहीं है मुझे, तो ईश्वर क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है ईश्वर की, बोलो? मेरी उपाधि नष्ट होने के बाद जब मुझे जन्म ही नहीं लेना है तो ईश्वर की आवश्यकता क्या है मुझे। इसी प्रकार से जब मेरी उपाधि खत्म हो गई तो मुझे भूख प्यास का कोई संबंध ही नहीं रहेगा, तो मुझे ईश्वर की क्या आवश्यकता पड़ेगी, बोलो है? तो यही कारण है कि मेरी उपाधि नष्ट होते ही मेरा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। मेरा जीव भाव नष्ट होते ही ऑटोमेटिकली एकदम एक ही साथ इमीडिएटली एक ही साथ ईश्वर की उपाधि नष्ट और ईश्वर भाव भी खत्म। यदि मैं ईश्वर भाव को अलग अपने से मानता हूं तो इसका मतलब मेरी उपाधि नष्ट नहीं हुई है। तो ये भी ये प्रसंग में आ गया। ये ज्ञानाज्ञान पदार्थौ दौ आत्मनो मुक्ति बंध दौ ज्ञानान मुक्तिर, ज्ञान द्वारा मुक्ति, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है मुक्ति का। हालांकि जीवात्मा को बहुत लोगों ने लॉलीपॉप दिया है, बहुत लोगों ने दिया है, हो तुम लोगों ने खाया कि नहीं है? बहुत लोगों ने लॉलीपॉप दिया है। ज्ञान से मुक्ति बहुत कठिन है, प्रभु का नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नरत उतर ही पारा, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। समझे कि नहीं, बोलो? जीवात्मा को लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं है। डिंडिम घोष है, वेदांत का एक घोष है, उद्घोष है, ईश्वर कृपा से मुक्ति, गुरु कृपा से मुक्ति। ऐसे ऐसे लोग बड़ा विचित्र है। तुम हमारे गुरु के नाम दीक्षा ले लो, मंत्र सुन लो, हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले लो, मंत्र सुन लो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब काम हमारे गुरु करेंगे। लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं है बेटा, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा भाई, हमने तो कभी नहीं कहा ऐसा। यदि वेदांत डिंडी में यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण का मतलब क्या मानते हो? कल्याण का अर्थ क्या करना चाहते हो? स्त्री का शरीर लेकर जन्मे थे और दूसरी बार पुरुष का शरीर लेकर जन्मना कल्याण मानते हो? इसी को कल्याण मानते हो तुम? है? मनुष्य का शरीर लेकर जन्मे थे और दूसरी बार देवता बन जाना, इसी को कल्याण मानते हो? मर्त्यलोक में जन्मे थे और बाकी दूसरे जन्म में स्वर्गलोक में पैदा होना, देवता बनना, इसी को तुम कल्याण मानते हो? बीएमसी का कॉरपोरेशन का पानी पीते थे और वहां जाकर अमृत पियोगे, इसी का कल्याण मानोगे तुम? है? यदि इसी को कल्याण मानते हो तो लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं है। वेदांत इसी प्रकार का लॉलीपॉप किसी को नहीं देता है, विशेष करके शंकर वेदांत, अद्वैत वेदांत किसी को भ्रम में नहीं रखता है। श्रुति प्रमाण है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम ऋति ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव तो ज्ञान के अलावा कल्याण और को और दूसरा उपाय ही नहीं है। फिर सीधे वही बात कहो ना, क्यों भ्रमित कर रहे हो? ज्ञानान मुक्तिर निबंधो अन्यात, ज्ञान के अलावा दूसरों से मुक्ति संभव नहीं, वह हर हालत में बंधन में ही रहेंगे, वो बंधन ही है। वो 6 महीने का ये वीजा लेकर अमेरिका गए और वीजा खत्म हो गया, अमेरिका में रहे तो अमेरिका में रहने का मजा आएगा कि नहीं? भले ही रहो अमेरिका के अंदर, डर तो अंदर रहेगा ना, वीजा खत्म है, इनलीगली रह रहा हूं, डर तो रहेगा कि नहीं, कहीं पकड़ा न जाऊं। अरे इतना भी यदि डर रह जाता है तो फिर काय का मुक्ति भाई? द्वैतात वही भयम भवति, श्रुति ने सीधे कह दिया कि द्वैतात वही भयम भवति। और श्रुति के ये कहते हुए जीव और परमात्मा ये दोनों अलग अलग रहेंगे ये कह देना, कहां से जीव का अभय प्रदान करोगे? बोलो, श्रुति ये कह रही है एक तरफ की द्वैतात वही भयम भवति, और तुम कहे जा रहे हो कि जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव हमेशा जीव ही रहेगा और जीव और परमात्मा के सान्निध्य में रहेगा। अरे भाई ये द्वैत परमार्थ में द्वैत, और फिर कहां से मुक्ति? भय तो रहेगा ना। और तुम यदि मानते हो कि भगवान जहां भी भेज देंगे वहीं हम रहेंगे, तो फिर अब क्या समस्या है? जब वो तुम ये कह रहे हो जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, फिर अभी क्या समस्या है तुम्हें? वो इसी विधि से रख ही रहा है, घुटनों का दर्द उसी में रखना चाहता है, वो रख रहा है, तो फिर तुम्हें समस्या क्या है? कमर के दर्द में ही रखना चाह रहा है तो रखे रहो, तो तुम्हें समस्या क्या है? क्यों मेरी शिकायत करते फिरते हो कि घुटने का दर्द है और कमर का दर्द है? कहते भी फिरते हो कि चाहे महलों में राख बास दे, झोपड़ी में राख दे, फिर तो तुम्हारा कोई समस्या ही नहीं है ना, तुम तो मुक्त ही हो, फिर तो रोते क्यों फिर रहे हो? तो ये तुम्हारा द्वैध चरित्र, एक तो ये कह देना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, और दूसरी तरफ ये कहते फिर ना कि भगवान की कृपा नहीं हुई है, भगवान की कृपा नहीं हुई है। देव जी क्या मतलब है कि किसी की कृपा नहीं होगी किसी ऊपर? तुम इतनी नालायक नहीं हो रोते फिरो, तुम सक्षम हो, तुम सक्षम हो, स्वयं सक्षम हो विचार करने में सक्षम हो, ज्ञान आश्रय ले, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। दसवां खुद कहता फिर रहा है कि भगवान की कृपा नहीं हुई है, और दसवां मर गया क्या विपत्ति आ गई है, ईश्वर क्यों नाराज हो गया, दसवां क्यों मर गया? कौन कह रहा है? दसवां ही कहता फिर रहा है। वेदांत का तो इतनी कहना है कि भाई तुम खुद ही दसवां हो, तुम कहीं मरे नहीं हो, तुम अपनी कृपा अपने ऊपर ही बरसाओ भाई, दूसरे का मुंह न ताको। ज्ञानाज्ञाने पदार्थौ दौ आत्मनो मुक्तिबंध दौ, ज्ञानान मुक्तिर निबंधो अन्यात इति वेदांत डिंडिमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।